अक्सर हम लोग ना सोचते हैं कि शुरुआती धार्मिक नेता हमेशा मतलब एकदम शांति, सहमति और एक दूसरे के प्रति आदर के साथ काम करते थे।
हाँ, एकदम साफ सुथरी इमेज बनी हुई है दिमाग में।
बिल्कुल, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ था। लेकिन सच्चाई ये है कि आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं।
सही बात है।
एक ऐसी कहानी जहां बड़े नेताओं के बीच बहुत गंभीर झगड़े थे।
झगड़े और हाँ, बैंगनी रंग के बेहद महंगे और उफ बदबूदार व्यापार में रची बसी एक क्रांति भी थी।
और अलौकिक घटनाएं तो ऐसी जिनको आज का मॉडर्न विज्ञान भी समझाने में उलझ जाता है।
वही तो आज हम इस गहरी छानबीन में डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा एक्ट्स किताब के अध्याय 15 और 16 पर दिए गए एक विस्तृत लेक्चर का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि इन दो अध्यायों के भीतर जो नेताओं का टकराव है, सांस्कृतिक उलझने हैं, उन्हें समझा जाए।
और इसका सबसे दिलचस्प पहलू वही है जहां हम घटनाओं की सतह से नीचे उतरते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। क्योंकि स्रोत दिखाता है कि प्राचीन रोम के कानून किस तरह काम करते थे, सामाजिक नियमों को कैसे तोड़ा जा रहा था।
और आधुनिक मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी, जिसको आम भाषा में हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, उसके तथ्य इन हजारों साल पुरानी बातों पर क्या रोशनी डालते हैं?
सही कहा आपने, ये कोई हवा में तैरती हुई कहानियां नहीं है। इनकी जड़ें उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं।
तो चलिए शुरुआत उस उथल पुथल से करते हैं जिसने सबसे पहले बुनियाद हिलाई थी। कहानी शुरू होती है अर्ली चर्च की सबसे बड़ी बैठक से,
जिसे जेरूसलम काउंसिल कहा जाता है।
हाँ, जेरूसलम काउंसिल। या प्रमुख नेता इस बात पर बहस कर रहे हैं कि नए जुड़ने वाले लोगों के लिए नियम क्या होंगे।
पर एक बात बताऊं, इस चर्चा ने इतिहासकारों को बहुत लंबे समय तक उलझाए रखा है।
अच्छा, वो कैसे?
एक बड़ी बहस इस बात पर रही है कि एक्ट्स किताब के 15वें अध्याय में जो ये बैठक दी गई है और गैलेशियंस किताब के दूसरे अध्याय में जो घटना बताई गई है, क्या वो दोनों असल में एक ही मीटिंग है?
ओह, मतलब लोग इस बात पर डिवाइडेड हैं।
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर कीनर और जेबी लाइटफुट जैसे जो बड़े विद्वान हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये दोनों घटनाएं दरअसल एक ही हैं।
लेकिन उन्होंने ये कैसे तय किया? कोई प्रूफ?
प्रूफ तो नहीं, पर उनके निष्कर्ष तक पहुंचने का तरीका बेहद व्यवहारिक है। वो तर्कशास्त्र के एक पुराने नियम का इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑकम्स रेजर कहते हैं।
ऑकम्स रेजर, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है।
हाँ, इस नियम का बहुत सीधा सा उसूल ये है कि जब आपके पास किसी समस्या के कई समाधान हो, तो जो सबसे सरल और सीधा जवाब होता है, आमतौर पर वही सच होता है।
अच्छा, मतलब फालतू की कॉम्प्लिकेटेड थियोरीज मत बनाओ।
सही पकड़ा। इतिहास में अनावश्यक रूप से नई घटनाओं की कल्पना करने से बेहतर है मौजूदा तथ्यों को मिलाना।
तो मतलब दोनों जगहों पर एक ही मुद्दे पर बहस हो रही थी।
हाँ, यानी नए लोगों का धर्म में शामिल होना, और दोनों जगहों पर लगभग वही मुख्य नेता मौजूद है।
तो सबसे सरल जवाब यही निकलता है कि अलग अलग लेखकों ने एक ही ऐतिहासिक मीटिंग को अपने अपने नजरिए से लिखा।
एकदम सही।
ऑकम्स रेजर का नियम तो चलिए वहां तक ठीक बैठता है, पर इस बड़ी सहमति वाले माहौल के तुरंत बाद जो एक घटना घटी है, वो सच में किसी को भी चौंका सकती है।
आप पॉल और बार्नाबास वाले झगड़े की बात कर रहे हैं ना?
हाँ हाँ, मतलब सोचिए, मीटिंग में सबने हाथ मिलाया, मुद्दे सुलझाए, और फिर तुरंत बाद दो सबसे बड़े नेता एक दूसरे से इतनी बुरी तरह झगड़ते हैं कि हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं।
और झगड़ा भी किस बात पर? उनकी पुरानी टीम के एक सदस्य को लेकर, जॉन मार्क।
सही में। देखिए, मैं सोच रहा था कि ये बिल्कुल आज के किसी बड़े टेक स्टार्टअप के को-फाउंडर्स के अलग होने जैसा लगता है।
स्टार्टअप जैसा? कैसे?
देखिए ना, एक तरफ पॉल हैं जो एक नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए किसी ऐसे बंदे को बिल्कुल नहीं चाहते जिसने पिछली बार उन्हें बीच रस्ते में अकेला छोड़ दिया हो।
हाँ, और दूसरी तरफ बार्नाबास है।
बिल्कुल, बार्नाबास रिस्क लेकर भी उस पुराने एम्प्लॉय को एक और मौका देना चाहते हैं, और दोनों में इतनी असहमति होती है कि दोनों अपनी अलग अलग कंपनियां बनाकर निकल पड़ते हैं।
ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, पर दरअसल ये किसी आम स्टार्टअप के टूटने से भी बड़ा मुद्दा था।
क्यों? पैसा तो था नहीं वहाँ?
पैसा नहीं था, लेकिन यहाँ स्टेक पर एक नए आकार ले रहे धर्म का पूरा भविष्य था। और पता है यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है?
क्या?
ये स्रोत की ऐतिहासिक विश्वसनीयता को बहुत मजबूत करता है। उन्होंने इस कड़वे सच को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की।
ओ, मतलब हीरो को परफेक्ट नहीं दिखाया।
बिल्कुल, उस दौर के प्राचीन इजराइलाइट और ग्रीको रोमन जीवनी लेखक अपने नायकों को देवता बनाकर पेश नहीं करते थे।
जैसे ग्रीक इतिहास में वो एकिलीज और राजा एगमेनॉन का टकराव है।
सही कहा, जैसे उनके आपसी टकराव को खुलकर लिखा गया है, ठीक वैसे ही यहाँ पॉल और बार्नबास का झगड़ा दर्ज है। ये लोग अपनी गलतियों और आपसी मतभेदों के साथ बिल्कुल आम इंसान ही थे।
पर देखा जाए तो इस टूटने का नतीजा भी कुछ नया लेकर आया। पॉल अकेले तो गए नहीं, उन्होंने साइलस नाम के एक नए साथी को चुन लिया।
और यही वो कड़ी है जहाँ नेताओं का अलग होना आगे के लिए रास्ता आसान कर देता है।
कैसे? सेस में ऐसा एहसास था।
जब पॉल ने सिलास को चुना तो अनजाने में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा अपने साथ जोड़ लिया। सिलास दरअसल एक रोमन नागरिक था।
अच्छा, उस वक्त तो इसकी बहुत वैल्यू होती होगी।
बहुत ज्यादा। प्राचीन रोम में इसका मतलब एक बहुत बड़ी ढाल होना था। एक रोमन नागरिक को बिना सटीक मुकदमे के और बिना कानूनी प्रक्रिया के कोड़ा नहीं मारा जा सकता था,
ना ही आसानी से जेल में डाला जा सकता था, है ना?
बिल्कुल। नए और अनजान शहरों में प्रचार करते वक्त दंगे भड़कने का खतरा हमेशा रहता था। सिलास का ये नागरिकता वाला स्टेटस आगे चलकर फिलिपी जैसे शहरों में उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया।
कमाल की बात है। मंजिल तय थी, साथी मजबूत था, पर सफर के लिए अभी भी एक और कड़ी जरूरी थी। लिस्ट्रा नाम की जगह पर उन्हें एक युवक मिलता है, टिमोथी।
और यहीं से एक नया सांस्कृतिक टकराव शुरू हो जाता है।
हाँ, क्योंकि टिमोथी की माँ यहूदी थी और पिता यूनानी यानी ग्रीक थे, और स्रोत बताता है कि उसके पिता ने उसका खतना नहीं होने दिया था।
उसके पिता के इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक कारण था।
क्या कारण था?
यूनानी समाज में मानव शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में सबसे बेहतर माना जाता था। उनकी नज़र में शरीर पर कोई भी कट लगाना या उसमें छेड़छाड़ करना बेहद बारबर और असभ्य हरकत थी।
अच्छा, तो मतलब पिता ने अपने कल्चर के हिसाब से सही किया।
हाँ, लेकिन इस चक्कर में टिमोथी बेचारा किसी भी समाज का पूरा हिस्सा नहीं बन पाया।
ना इधर का ना उधर का।
बिल्कुल, उस दौर में सामाजिक और धार्मिक पहचानी सब कुछ होती थी। यहूदी लोग उसे गैर यहूदी मानते थे क्योंकि उसने अपने धर्म का नियम पूरा नहीं किया था।
और गैर यहूदी लोग उसे इसलिए अपना नहीं मानते थे क्योंकि उसकी माँ यहूदी थी। तो जब पॉल ने देखा कि नए क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए इस युवक की पहचान स्पष्ट होना जरूरी है,
तो उन्होंने आगे बढ़कर टिमोथी का खतना करवाया ताकि लोग उसकी बात सुने।
रुकिए रुकिए एक सेकंड, यहाँ तो एक बहुत बड़ा दोहरा मापदंड नजर आ रहा है।
आपको ऐसा लग रहा है?
हाँ बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, गैलेशियंस की चर्चा में पॉल ने टाइटस नाम के एक और साथी का खतना करवाने से सख्त इनकार कर दिया था। वहां तो वो इस मुद्दे पर किसी से भी झगड़ने को तैयार थे।
हाँ ये बात तो है।
तो फिर यहाँ टिमोथी के साथ ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्या पॉल अपने ही बनाए नियम तोड़ रहे थे?
देखने में ये जरूर दोहरा नियम लगता है, लेकिन अगर हम इसको बड़े संदर्भ से जोड़कर देखें तो स्रोत इसके पीछे की बारीक लॉजिक को स्पष्ट करता है।
तो मतलब दोनों केसेस अलग थे?
जमीन आसमान का अंतर था। टाइटस के मामले में बहस इस बात पर हो रही थी कि क्या ईश्वर से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए ये प्रथा जरूरी है।
और पॉल का जवाब क्या था वहाँ?
उनका जवाब बिल्कुल साफ था, नहीं, मुक्ति के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है।
अच्छा, तो टिमोथी वाले केस में क्या अलग था?
टिमोथी के मामले में मुक्ति का कोई सवाल ही नहीं था। ये फैसला दूसरी सभ्यताओं के अनुरूप ढालने के लिए लिया गया था। इसको कंटेक्सचुअलाइजेशन कहते हैं।
यानी नए लोगों तक पहुंचने के लिए एक सांस्कृतिक अनुकूलन।
बिल्कुल, मिशन के दौरान लोग आपसे जुड़ें, आपकी बात सुने, इसके लिए सामाजिक दायरों में फिट बैठना पड़ता है। मिशन के लिए किए गए समझौते और धार्मिक शर्तों में फर्क होता है।
सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंजिल वही है, सिद्धांत वही है, पर सामने वाले की भाषा और समझ को समझकर अपना ढंग थोड़ा बदल लिया।
यह सहनी थी, उसके लिए वो तैयार थे।
अब टिमोथी का जुड़ने से टीम तो ठीक ठाक मजबूत हो गई, साथी नए थे, जोश हाई था, लेकिन अजीब बात देखिए, जिधर भी वो निकलते रास्ता बंद मिलतो।
हाँ, श्रोत बताता है कि होली स्पिरिट ने उन्हें एशिया के रोमन क्षेत्र और बिथिनिया की तरफ जाने से पूरी तरह रोक दिया।
ये तो बिल्कुल किसी कार के जीपीएस के बार बार रीराउटिंग बोलने जैसा है। सफर में बार बार रास्ते बंद हो रहे हैं, आप आगे जाना चाहते हैं और कोई दिशा निर्देश आपको मुड़ने पर मजबूर कर रहा है।
और यही मुड़ते हुए वो आखिरकार घूमते घूमते ट्रोएस पहुँचे, जिसे अलेक्जेंड्रिया ट्रोएस भी कहा जाता था।
ये तो वो पुराने ट्रॉय के पास वाला बड़ा रोमन शहर था ना?
हाँ, ट्रॉय। और यहाँ पर इतिहास अपने आप को एक नए ढंग से दोहराता है।
ट्रॉय, ये वही जगह है जिसका जिक्र मशहूर ट्रोजन वॉर में आता है ना, जो सदियों पहले लड़ा गया था,
लगभग 1186 BC के आसपास। और उसी युद्ध के बाद से और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय तक इस जगह को एक खास प्रतीक माना जाता था।
कैसा प्रतीक?
प्राचीन काल में ग्रीक्स और रोमन्स दुनिया को महाद्वीपों में बांटते थे। उनकी नजर में ट्रॉय वो आखिरी छोर था जहां से यूरोप की सेनाओं ने निकलकर एशिया पर हमला किया था।
ओ, मतलब यूरोप द्वारा एशिया पर हमले का गेटवे था वो।
सदियों से युद्ध और कब्जे का दरवाजा। लेकिन यहाँ ट्रॉयज में रहते हुए पॉल को रात में एक अजीब सपना आता है।
वहीं जिसमें एक मैसिडोनिया का आदमी दिखता है।
हाँ, वो आदमी सपने में कहता है, मैसिडोनिया आकर हमारी मदद करो।
तो जो रास्ता बंद मिल रहा था वो इस अनपेक्षित सपने से आखिरकार खुल गया। पर ये दिशा तो एकदम नई थी।
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। इस एक सपने ने इतिहास का कितना बड़ा उलट फेर कर दिया, सोचिए।
कैसे?
देखिए, सदियों से जो दिशा यूरोप से एशिया की तरफ युद्ध और हमलों की थी, अब वही दिशा पलट रही थी।
अरे वाह, मतलब उल्टा सफर।
एक शांति और प्रेम का संदेश लेकर एक एशियन फेथ या मध्य पूर्वी धर्म अब एशिया से यूरोप की तरफ जा रहा था।
ये तो सच में इतिहास का एक बड़ा उलट फेर था। तलवारों की जगह विचारों की क्रांति हो रही थी।
बिल्कुल।
लेकिन जब वो लोग यूरोप के मैसिडोनिया क्षेत्र में फिलिपी नाम के शहर में कदम रखते हैं तो किस्सा थोड़ा अलग हो जाता है। फिलिपी एक गर्व से भरी रोमन कॉलोनी थी जहां डायना की पूजा होती थी।
हाँ, और वहां के नागरिक खुद को रोम का ऑनररी सिटीजन मानते थे।
इसीलिए शायद बाद में पॉल ने उन्हें लिखा था कि तुम्हारी नागरिकता स्वर्ग में है।
सही पकड़ा आपने। पर वहां धार्मिक हालात अलग थे। स्रोत कहता है कि वहां कोई यहूदी प्रार्थना घर यानी सिनेगॉग नहीं था।
सिनेगॉग ना होने का कोई खास कारण था?
उस दौर का एक बड़ा सख्त नियम था, एक सिनेगॉग बनाने के लिए कम से कम 10 यहूदी मर्दों का होना जरूरी था।
अच्छा, 10 मर्द तो थे ही नहीं वहाँ। तो नतीजा ये हुआ कि पॉल और उनकी टीम को शहर से बाहर गेंगीत्स नदी के किनारे जाना पड़ा,
जहाँ उन्हें खबर मिली थी कि कुछ औरतें प्रार्थना करने के लिए इकट्ठी होती हैं।
यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। एक प्राचीन समाज जहाँ बड़े शक्तिशाली मर्दों का बोलबाला था, वहाँ इस अर्ली चर्च की शुरुआत नदी किनारे बैठी औरतों से हो रही है।
ये ग्रास रूट शुरुआत अजीब जरूर लगती है, पर प्रभावशाली बहुत थी।
लेकिन एक सवाल है, ये औरतें वहाँ क्यों आती थी? उन्हें नए धर्मों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी?
इसके पीछे भी बड़ा सामाजिक कारण था। औरतें खासकर उस दौर में गैर स्थानीय या एशियन धर्मों के प्रति ज्यादा खुले विचार रखती थीं।
क्यों? मर्दों को क्या दिक्कत थी?
अगर एक मर्द अपना स्थानीय धर्म छोड़ दे तो उसे सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन औरतों के पास पहले से ही आजादी कम थी, इसलिए स्थानीय धर्मों को ना मानने पर उन्हें सामाजिक तौर पर कम नुकसान होता था।
समझ गया, खोने को कम था उनके पास। इन्हीं औरतों के बीच एक नाम उभर कर आता है, लिडिया का।
हाँ, लिडिया। वो थायतीरा की रहने वाली थी और बैंगनी यानी पर्पल रंग का सामान बेचने वाली एक अमीर और स्वतंत्र महिला थी, फ्रीड वुमन जिसे कहते हैं।
और ये पर्पल रंग का व्यापार सुनने में नॉर्मल लगता है, पर दरअसल बहुत ही भयंकर और बड़ा बिजनेस था।
बिल्कुल, उस दौर में ये रंग कोई आसान चीज नहीं थी। ये मुरेक्स नाम के घोंगों से निकाला जाता था,
तब जाकर रंग मिलेगा। और वो रंग इतना महंगा बनता था कि ये सिर्फ सबसे अमीर लोगों का स्टेटस सिंबल था।
सिर्फ अमीर और शाही परिवार के लोग। तो अगर लिडिया इस व्यापार में थी तो सोच लीजिए वो कितनी धनवान महिला थी।
और उस अमीर महिला ने मर्दों की इस टीम को अपने घर में ठहराया, उनकी संरक्षक बनी। उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये सामाजिक नियमों को तोड़ना था, है ना?
पूरी तरह से। प्राचीन रोम के रूढ़िवादी लोग अक्सर यही शिकायत करते थे कि महिलाएं पूर्वी धर्मों की तरफ आकर्षित हो रही हैं।
और लिडिया का उन्हें अपने घर रखना और उनका पेट्रन बनना
धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे विरोधी आसानी से चरित्र पर कीचड़ उछाल सकते थे, पर उन्होंने परवाह नहीं की।
तो अमीर लोग तो जुड़ गए इस अर्ली चर्च से। पर अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां लिडिया जैसी ताकतवर महिला से मिलने के बाद इनका सामना एक बिल्कुल अलग शख्सियत से होता है।
आप उस गुलाम लड़की की बात कर रहे हैं?
हाँ, एक ऐसी लड़की जिसका शोषण उसके मालिक तो कर ही रहे थे, पर साथ ही एक अलौकिक शक्ति भी उस पर हावी थी।
स्रोत उसे एक ऐसी गुलाम लड़की बताता है जिसके अंदर पाइथेनस की आत्मा थी, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन।
ये पाइथेनस शब्द वहीं से आया ना, डेल्फिक ओरेकल ऑफ अपोलो से।
बिल्कुल, ऐसा माना जाता था कि ये आत्माएं इंसान को मैंटिक फ्रेंजी में ले जाती हैं, जहां वो भविष्यवाणी करती थी। और ये लड़की पॉल और उनकी टीम के पीछे चलते हुए लगातार चिल्ला रही थी कि ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं।
सर्वोच्च ईश्वर यानी मोस्ट हाई गॉड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? वो तो ठीक ही तो कह रही थी।
प्रॉब्लम भाषा और समझ की थी। मैजिक और पेगन कल्चर्स में
ये मोस्ट हाई गॉड वाला शब्द ज्यूस या किसी भी सुप्रीम गॉड के लिए इस्तेमाल होता था। लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल रहे थे।
ओ, तो गलतफहमी हो रही थी।
हाँ, और पॉल आखिरकार इस शोर से इतने थक गए कि उन्होंने उस आत्मा को जीसस के नाम से बाहर निकाल दिया।
और आत्मा निकलते ही लड़की की भविष्यवाणी की ताकत गायब,
जिसकी वजह से उस लड़की के मालिक अपनी आर्थिक कमाई खोने के कारण बहुत गुस्सा हो गए।
ये कहानी सुनने में बिल्कुल किसी सुपरनेचुरल मूवी जैसी लगती है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है?
आपका क्या मानना है?
मेरा मतलब है कि आज के इस आधुनिक साइंस को मानने वाले दौर में सुनने वाले इन अलौकिक बातों को कैसे समझें? क्या ये सब दिमागी बीमारियां या मेंटल इलनेस नहीं है?
दिमागी बीमारी होते हैं, पर
पड़ गया।
पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। पता है 74% समाजों में स्पिरिट पजेशन या आत्मा आने की मान्यता है आज भी।
74%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है।
और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने सिर्फ कहानियां नहीं सुनी है, उन्होंने पजेशन ट्रांस के दौरान दिमाग की ऑल्टर्ड न्यूरोफिजियोलॉजी को डॉक्यूमेंट किया है,
मशीन्स लगाकर चेक किया है। वाह, पर स्रोत में तो कुछ और अजीब उदाहरणों का जिक्र था। वो दीवार वाला क्या किस्सा था?
हाँ, योरम मुगोरी का किस्सा। वो एक ट्रेडिशनल अफ्रीकन एग्जॉसिस्ट थे। उन्होंने किसी इंसान को दीवार पर चढ़कर छत तक जाते देखा है, जो फिजिकली असंभव है।
बिल्कुल असंभव है। और वो दूसरा केस, एडिथ टर्नर वाला?
वो एक बहुत जानी मानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रही हैं। उन्होंने जाम्बिया में एक रिचुअल के दौरान एक स्पिरिट सब्सटेंस को इंसान के शरीर से बाहर निकलते हुए अपनी आंखों से देखा था।
रुकिए, पर मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला केस वो लगा डेविड वैन गेल्डर वाला, जो साइकियाट्रिस्ट थे।
वो सच में हैरान करने वाला था। 16 साल के एक लड़के के पास रखी हुई क्रूसिफिक्स की कीलें पिघल गई थी।
मेल्टडाउन हो गया था उनका।
कीले पिघलना दिमागी बीमारी से कैसे समझाया जा सकता है? ये तो सीधा सीधा फिजिक्स के रूल्स तोड़ रहा है। वही तो बात है, पश्चिमी सभ्यता ने इन विचारों को पूरी तरह नकार दिया है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग और मानव विज्ञानी इस इंटरमीडिएट रेल्म यानी बीच के अदृश्य संसार की सच्चाई पर बहस कर रहे हैं।
तो एक्ट्स की ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है?
नहीं, ग्लोबल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बेहद विश्वसनीय है। साइंस हर चीज का जवाब नहीं दे सकती।
कमाल है, अगर हम इस पूरी छानबीन को एक जगह समेटें तो क्लियर हो जाता है कि अर्ली चर्च का सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था।
बिल्कुल नहीं, उसमें नेताओं के आपसी मतभेद थे।
हाँ, और सांस्कृतिक दायरों का टूटना था,
जैसे टिमोथी का खतना या अमीर लिडिया की हॉस्पिटैलिटी,
और सुपरनेचुरल फोर्सेस का सामना जिनका आधुनिक मानव विज्ञान आज भी अध्ययन कर रहा है।
स्रोत को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है।
कैसा सवाल? सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारे आज के इस आधुनिक और साइंटिफिक विचारों ने हमें प्राचीन इतिहास की सच्चाइयों को देखने से कितना अंधा कर दिया है?
सही दिशा में सोच रहे हैं आप।
मतलब अगर मानव विज्ञानी आज उन्हीं बातों को दर्ज कर रहे हैं जो सदियों पुराने धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, तो क्या हम इतिहास को उसकी सच्चाई में समझ रहे हैं या सिर्फ अपनी आधुनिक सीमित नजर से देख रहे हैं? इस पर अकेले में आराम से विचार कीजिएगा।